नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आश्वासन दिया, पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं। सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने के लिए ईरान को दी गई समय सीमा बढ़ाई। ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमले 5 दिन के लिए रोके। ईरान ने कहा, अमरीका सैन्य योजना बनाने के लिए समय ले रहा है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का 7वां चरण शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विश्व टीबी दिवस की पूर्व संध्या पर देश से टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। और असम, केरलम तथा पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त, कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने लोकसभा में आज पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान में कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
आज भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रही है।
यहाँ भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि वैश्विक संकटों का बोझ किसानों पर न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सभी एजेंसियों, चाहे वह तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा हो, साइबर सुरक्षा हो या रणनीतिक प्रतिष्ठान हो, सभी को सतर्क रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद और कूटनीति है।
जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है।
सरकार ने आज फिर आश्वासन दिया है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 50% वाणिज्यिक एलपीजी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध हैं।
नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं, उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर उन्होंने कहा कि करीब 37,000 छापे मारे जा चुके हैं, 550 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी 22 जहाज और 600 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटों में 34 लोगों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस इसराइल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।
सभी भारतीय नागरिक जो हमारे इसराइल में हैं वो सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक के घायल होने की खबर आई थी। हमारी राजदूतावास वहां पर इस मसले पर नजर रखे हुए हैं। संघर्ष में 6 भारतीय नागरिक की जान गई और 1 भारतीय नागरिक अभी लापता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर सैन्य हमले स्थगित करने के ताजा बयान पर श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान को दी गई समय सीमा को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 5 दिन तक बिजली संयंत्रों पर हमले नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हाल ही में हुई बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे संघर्ष का पूर्ण और व्यापक समाधान निकल सकता है। उधर ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करना और संभावित सैन्य योजना के लिए समय हासिल करना बताया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राजनयिक संकेतों के बावजूद जमीनी स्थिति अस्थिर बनी हुई है।
हालिया घटनाक्रमों से तनाव कम होने की संभावना है, लेकिन संघर्ष का खतरा अभी भी बना हुआ है। अमेरिका के हमलों को टालने का फैसला एक सामरिक विराम का संकेत है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद जारी है। इजरायली सेना लेबनान में अपने अभियान बढ़ा रही है, जबकि खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर मंडरा रहे खतरे क्षेत्रीय स्तर पर तनाव फैलने का जोखिम बढ़ा रहे हैं। वैश्विक तेल बाजारों में हो रही तीव्र प्रतिक्रियाओं के बीच आने वाले दिन तय करेंगे कि कूटनीति से स्थिति स्थिर होती है या पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी आपके ई एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई देती है, इसलिए जरूरी है कि करदाता ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना AIS देखें। अगर कोई आय छूट गई हो या रिटर्न फाइल नहीं हुआ हो तो निर्धारित दर पर अपडेटेड ITR/ITRU फाइल करें।
याद रखें, जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक मीडिया समूह के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं, इसलिए मैं TV9 के मंच से फिर कहूंगा, ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के 7वें चरण का शुभारंभ किया। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, उर्वरक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में खनन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों के 19 ब्लॉक हैं। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास, पर्यावरण स्थिरता और तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रिफॉर्म्स इस 11 साल में लाए हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल और एनर्जी ट्रांसिशन के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसी सभी क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा रोल है।
विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि क्षय रोग आज भी एक गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है और विश्व में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान ने शीघ्र निदान का विस्तार करने, निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने, पोषण संबंधी सहायता को मजबूत करने और रोगी की देखभाल में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में श्री नड्डा टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का भी शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। भारतीय ध्वज वाले दो LPG जहाज जग वसंत और पाइन गैस ने आज शाम होर्मूज जलडमरू मध्य को पार कर लिया। इनमें 92,612 मीट्रिक टन से अधिक LPG भरी हुई है। जग वसंत जहाज में 33 और पाइन गैस जहाज में 27 भारतीय नाविक सवार हैं। इन जहाजों की 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। विदेश मंत्री ने आज नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद देशों के राजदूतों से मुलाकात की। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने क्षेत्र में भारतीय समुदाय को निरंतर समर्थन देने के लिए राजदूतों को धन्यवाद दिया। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज शाम समाप्त हो गया। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। केरलम में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल 676 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फाफामुह इलाके में आज दोपहर एक कोल्ड स्टोरेज केंद्र की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। मलबे से 17 मजदूरों को बचाया गया है और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए वित्त मामलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2.46% गिरकर 72,696 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.6% लुढ़ककर 22,513 पर आ गया। आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 93.97 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
भारतीय रेलवे ने दिल्ली हावड़ा गलियारे के 190 किलोमीटर लंबे प्रयागराज कानपुर खंड पर कवच स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। ये शुरुआत रेलवे की इस खंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां चलाने, रेल सुरक्षा बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन्हें वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आश्वासन दिया, पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं। सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मूज जलडमरू मध्य फिर से खोलने के लिए ईरान को दी गई समय सीमा बढ़ाई। ईरान ने कहा, अमेरिका सैन्य योजना बनाने के लिए समय ले रहा है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का 7वां चरण शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।